दोस्तों, पिछले साल संसद में महिलाओं के लिए राजनीति में 33% नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ। महिलाओं की भागीदारी के लिए ये 30 साल पुरानी मांग थी। इस बिल का श्रेय लेने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां लाइन में आगे खड़ी थीं और हर कोई खुद को महिलाओं की सबसे बड़ी हितैषी घोषित करने में लगी थी। बिल के पास होने से भारतीय राजनीति में प्रतिनिधित्व में सुधार की उम्मीद भी जगी, लेकिन इसे लागू करने में अभी भी कई वैधानिक रोड़े हैं जो समय के साथ शायद सुधर भी जाएं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे समाज में महिलाओं और उसकी पहचान क्या वाकई सोचने योग्य विषय है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप सुन रहे हैं राजीव की डायरी का पन्ना, महिलाओं की पहचान एक गुमशुदा विषय। दोस्तों, समाज में महिलाओं की पहचान का महत्व और उनकी स्थिति को समझने की आवश्यकता के बावजूद यह दुखद है कि आधुनिक समय में भी महिलाओं की पहचान गुम हो रही है। विभिन्न समाजों, पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक मानसिकताओं के चलते महिलाओं को सिर्फ घरेलू और पारंपरिक भूमिकाओं में ही समझा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उसकी सार्वजनिक पहचान कम होती है और उन्हें आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की भूमिका से वंचित किया जाता है। बहुत से समाजों में महिलाओं को शिक्षा और साक्षरता की पहुंच में असमानता का सामना करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप वे आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर होती हैं, जिससे उनकी पहचान भी कम होती है। कुछ सामाजिक समुदायों में महिलाओं की शिक्षा की पूरी और समान पहुँच नहीं मिलती है। इससे उन्हें समाज में अपना सही स्थान नहीं मिल पाता है और उनकी पहचान पर प्रतिबंध आता है। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे यहाँ दो तरह के देश बसते हैं, एक शहर जिसे हम इंडिया कहते हैं और दूसरा ग्रामीण जो भारत है, और इसी भारत में देश की लगभग आधी से ज़्यादा आबादी रहती है और उस आबादी में आज भी हम महिला को नाम से नहीं जानते। कोई पिंटू की माँ है, कोई मनोज की पत्नी, कोई फलाने घर की बड़ी या छोटी बहू है, कोई संजय की बहन, तो कोई फलाने गांव वाली, जहाँ उन्हें उनके मायके के गांव के नाम से जाना जाता है। हम महिलाओं को आज भी ऐसे ही पुकारते हैं और अपने आप को समाज में मॉडर्न दिखने की रीति का निर्वाह कर लेते हैं। समाज में महिलाओं की पहचान का महत्व और उनकी स्थिति को समझने की आवश्यकता के बावजूद यह बहुत दुख की बात है कि आधुनिक समय में भी महिलाओं की पहचान गुम हो रही है। बीबीसी की चर्चित पत्रकार सीटू तिवारी का कहना है कि जब वो कुछ दिनों पहले भारतीय भाषा की पहली महिला उपन्यासकार रशीदुन निसा पर एक स्टोरी कर रही थी, तब उन्होंने पाया कि उन्होंने 1881 में इस्ला उन निसा लिखा, लेकिन वो छप गया 1894 में जब उनका बेटा बैरिस्ट्री पढ़कर वापस लौटा। वजह, लेखिका का नाम पर्दे में रखा जाना था, सो नॉवेल पर लेखिका का नाम नहीं छापकर लिखा गया बैरिस्टर मोहम्मद सुलेमान की माँ। ये 1881 की बात थी, लेकिन आज भी औरतें क्या अपने नाम से जानी जाती हैं? हमारा गांव मिथिलांचल, वहाँ औरतों के नाम उनकी जगह या मायके के नाम पर हैं, जैसे कि मोहनपुर वाली, कुर्जी वाली, सोनवर्षा वाली, बखोरापुर वाली। वो कहती हैं कि पहली दफ़ा जब ये सुना तो लगा जैसे कान में मानो गर्म तेल डाल दिया गया हो, और फिर उन्होंने ज़बरदस्ती स्टोरी की और छपी भी। लेकिन हमारे समाज में केवल मीडिया जोर लगा है तो सामाजिक परिवर्तन शायद संभव नहीं। हम सबको मिलकर इस तरफ सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल औरतें ही औरतों की आवाज़ उठा सकती हैं, इसके लिए हम सभी को, खास करके पुरुषों को आगे आना होगा। औरतों और पुरुषों को बराबर मानने वाला और उनकी बराबरी के लिए लड़ने वाला हर इंसान औरतों की आज़ादी की बात कर सकता है या उनके मुद्दे उठा सकता है। आज के मॉडर्न समय में हम उन्हें फेमिनिस्ट कह सकते हैं, और इसी फेमिनिस्ट विचार की मूल बात यह है कि औरतों और पुरुषों के बीच सत्ता का संबंध बराबर का हो। हम औरतों को आज़ादी दें ताकि वे भी अपने सपने की उड़ान को बिना किसी पुरुष की सहायता से उड़ सकें। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि आप इस मसले को लेकर क्या सोचते हैं। आपके अनुसार से औरतों को आगे लाने के लिए हमें किस तरह के प्रयास करने की ज़रूरत है? साथ ही आप औरतों को अपने गांव में, समाज में किस नाम से जानते हैं? अपने विचार और अनुभव बताने के लिए अभी दबाएं अपने मोबाइल में नंबर 3 का बटन या मोबाइल वाणी ऐप में ऐड का बटन और रिकॉर्ड करें अपनी बात। याद रखें, समाज को बदलने के लिए हमें बोलना ही होगा, तभी तो मोबाइल वाणी मानती है कि बोलेंगे तो बदलेगा। नमस्कार।